तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण राधा रानी की महिमा को समझ नहीं पाते हुँ? और राधा रानी को वेद गोप्य कहा गया है। वेद गोप्य यानी कि वेदों में भी वो छिपी हुई हैं। कोई वैदिक शास्त्र भी पढ़ लेगा तो श्रीमती राधा रानी की महिमा को नहीं जान समझ पाएगा। और वेद व्यास जी ने, जब भगवान ने वेद व्यास जी के माध्यम से सारे शास्त्र वेद लिखवाए, तो अपने योग माया के माध्यम से वेद व्यास जी को ऐसी बुद्धि दी कि श्रीमती राधा रानी को सभी शास्त्रों में बहुत ही गोपनीय रखा गया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि कोई भी साधारण व्यक्ति उनको नहीं समझ पाएगा। राधा रानी की महिमा को स्थापित करने के लिए मुझे स्वयं प्रकट होना पड़ेगा, और भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो जिनकी महिमा को समझने के लिए स्वयं भगवान को, उनके भाव को अंगीकार करना पड़ता है, तो हम जैसे साधारण जीवों को क्या कहना। तो राधा रानी की इतनी महिमा है। तो ये तो यहां कुछ तत्व विचार, ये जाना अति आवश्यक है, तभी हम कुछ लीला का आस्वादन कर पाते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण कौन है और श्रीमती राधा रानी कौन है। अभी भी हम कितना समझ पाए हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन कुछ मालूम होना चाहिए कि वो साधारण नहीं है, वो स्वयं परम सत्य हैं। और जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य की रोशनी का, अग्नि और ऊष्मा का, कस्तूरी और सुगंध का आपस में संबंध है, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण का संबंध है। क्या सूर्य को अपनी कांति से, सूर्य की रोशनी से विवाह करने की आवश्यकता है? क्या अग्नि को ऊष्मा से विवाह करने की आवश्यकता है? क्या कस्तूरी को अपनी महक से विवाह करने की आवश्यकता है? इनको तो अलग किया ही नहीं जा सकता, तो दोनों एक ही हैं। तो मूर्खता है कि उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया। फिर भी इस भौम लीला में, भांडीर वन में, ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह भी कराया। जिन लोगों को बहुत उत्सुकता होती क्यों नहीं किया, उनके लिए बताया लीला के। फिर एक बार प्रभुपाद जी भागवतम के दूसरे स्कंद में लिखते हैं, जहां सुखदेव गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं भगवान का, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण यज्ञपति हैं, कृष्ण धरपति हैं, कृष्ण सतामपति हैं, कृष्ण सब के पति हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस संसार में एक व्यक्ति एक पत्नी का पति बन के बहुत गर्वित महसूस करता है, और जब कोई व्यक्ति ऐसा गर्वित महसूस करता है तो कृष्ण को बड़ी हंसी आती है कि ये अपने आप को पति मान रहा है, सबका पति तो मैं हूं। तो इस प्रकार से मालूम होना चाहिए कि कृष्ण परम सत्य हैं और श्रीमती राधा रानी उनकी शक्ति हैं, अलादनी शक्ति जो उनको आनंद देती है। कृष्ण के आनंद का स्रोत श्रीमती राधा रानी है। क्यों उनको आनंद देती है? कि उनका चित, उनका काया, उनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से कृष्ण भावित हैं। वो हर वक्त केवल कृष्ण को आनंद देने के बारे में सोच रही हैं। ब्रजवासियों में और साधारण व्यक्तियों में क्या अंतर है? सभी धर्मों में यह बताया जाता है कि हर मनुष्य को भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन ब्रजवासी भगवान से प्रार्थना नहीं करते, वो भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो कृष्ण की रक्षा के लिए, कृष्ण के रखरखाव के लिए प्रार्थना करते हैं। वो भगवान के बारे में नहीं सोचते, वो भगवान के लिए सोचते हैं। जब कृष्ण सुबह 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 निकलते हैं गायें चराने, तो यशोदा मैया और सभी गोपियों को चिंता होती है, कृष्ण के इतने नाजुक नाजुक पांव हैं, जंगल में कैसे वो नंगे पांव चल रहे होंगे, इतनी धूप है, छाता भी लेकर नहीं गए, पादुकाएं भी डालकर नहीं गए, कितना कष्ट हो रहा होगा उनको। वो कृष्ण के लिए सोचते हैं, कृष्ण के बारे में नहीं। तो ये फर्क है। और सभी ब्रजवासियों में श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदि पुराण में बताते हैं, त्रैलोक्या पृथ्वीं धन्या यत्र वृंदावनम पुरीम तत्रापि गोपिका पात्र यत्र राधा विदा मम। इस पूरे तीन लोकों में पृथ्वी लोक धन्य है, और पृथ्वी लोक में वृंदावन धन्य है, और वृंदावन में गोपिकाएं धन्य है, और उन गोपिकाओं में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं मम राधिका, मेरी राधा धन्य है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की महिमा है। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आनंद देती है आलादनी शक्ति के रूप में, साथ ही में भक्तों को पोषण करती हैं। हम लोग जब भक्ति में जुड़ते हैं, या कोई भी व्यक्ति, आज उत्सव है, वो यहां आया होगा, हम निश्चित रूप से कुछ हृदय में शांति या प्रेम का अनुभव करते हैं। कितने लोगों का यह अनुभव है कि मंदिर में आते हैं कुछ अच्छा लगता है, कीर्तन सुनते हैं अच्छा लगता है। तो ये जो हमारे हृदय में सद्भाव उत्पन्न होते हैं, ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है, ये उनके द्वारा हमारा पोषण हो रहा है। हम नहीं समझ पाएंगे, ये कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में संचारित हो रहा है। जीव और कृष्ण का संबंध केवल एक ही है, वो है प्रेम का। वो प्रेम सनातन है, वो टूटता नहीं है। हम उसको भूल जाते हैं, संबंध को, कृष्ण नहीं भूलते। कृष्ण की तरफ से स्विच ऑन है, हमारी तरफ से स्विच ऑफ है। लेकिन जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, राधा कृष्ण का नाम सुनते हैं, तो फिर वो प्रेम थोड़ा सा जागृत होना शुरू होता है। और जितनी मात्रा में वो जागृत होता है, जितनी मात्रा में हम कृष्ण के समीप जाएंगे, उतनी मात्रा में राधा रानी के माध्यम से वो अलादनी शक्ति हृदय में संचारित होती है, वो प्रेम संचारित होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, नवजात शिशु, जब माँ उसको स्तनपान कराती है तो नवजात शिशु ये नहीं देखता कौन मुझे दूध पिला रहा है, उसको क्या देखना है, बस दूध चाहिए, उसको इसके शोर से कोई मतलब नहीं है। दूध पिया, संतुष्ट हो गया। सर्दी लगी, रोया, माँ ने कम्बल डाला, उसको कोई मतलब नहीं कौन मेरी केयर कर रहा है, मुझे मेरा काम हो गया। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वह समझता है कि मेरी माँ मेरा ध्यान रख रही है। इसी प्रकार से हम जब आते हैं भक्ति में प्रारंभ में, हमें नहीं लगता ये कृष्ण प्रेम है। हाँ, कुछ अच्छी सी शांति मिलती है, अच्छा लगता है आके, लेकिन वो कृष्ण प्रेम है। लेकिन जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, फिर मालूम चलता है कि कृष्ण और श्रीमती राधा रानी कितने कृपालु हैं, वो हमारे कितना हमारा पोषण कर रही हैं। और जो ये भक्ति का सुख है, ये साधारण सुख से बहुत अलग है। इस संसार में जब हम सुखी होते हैं, किसी चीज की इच्छा रखते हैं, वो प्राप्त हो जाती है, तो हम सुखी होते हैं। लेकिन जैसे ही मालूम चलता है कि हमारे मित्र या संबंधी के पास उससे बेहतर चीज आ गई, तो हमारा सुख बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? कम हो जाता है। अभी पीछे एक एडवर्टाइजमेंट देखी, एक व्यक्ति नई गाड़ी चला रहा था, नई गाड़ी चला रहा था, बड़ा खुश था, और एक युवती उसको देखकर मुस्कुरा रही थी, बड़ी प्रशंसा कर रही थी, और युवक भी बहुत प्रसन्न था। और उस दोनों के पीछे एक और एक युवक खड़ा था जिसकी आंखों में बड़ा गुस्सा था। तो नए व्यक्ति ने नई गाड़ी ली, वो गाड़ी चला रहा है, उसको युवती हंस के देख रही है, और एक युवक साथ में खड़ा है, बड़े द्वेष से देख रहा है, और उस पे कैप्शन लिखा हुआ है, एंजॉय द एनवी इन योर नेबर्स आईज। अपनी पड़ोसी की आंखों में जो द्वेष है उसको एंजॉय करो। ये भौतिक सुख है ना। हमारा सुख से अगर कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, तो हमारा सुख और बढ़ जाता है ना। और हमारे से ज्यादा किसी के पास अच्छी सुविधा मिल गई, तो हमारा सुख कम हो जाता है। ये भौतिक सुख है। लेकिन जिस ढंग से सुख श्रीमती राधा रानी देते हैं, जो हमारा पोषण करती हैं, अगर हम वास्तव में सही ढंग से भाव से भक्ति कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही हम कोई देखते हैं, कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, तो हमें अच्छा लगता है ना, उसके उत्साह को देख के हमारा उत्साह बढ़ता है, और वो भी हमें खींच के अंदर ले आता है नचाने के लिए, हम भी नाचते हैं, वो नया व्यक्ति भी नाचते हैं, हम भी नाचते हैं। तो जो उस नए व्यक्ति को नाचते हुए देखकर इस पुराने व्यक्ति का उत्साह कम होता है कि बढ़ता है, उसका आनंद बढ़ता है, उसका आनंद बढ़ता है, तो इस व्यक्ति का आनंद क्या होता है, कम होता है कि बढ़ता है, बढ़ता है। इस ढंग से भक्ति का जो सुख है, ये दूसरे के सुख को भी बढ़ाता है ना। जिस प्रकार से सब गोपियां सज धज के कृष्ण से मिलने जाती हैं, जब गोपियां सज धज के जाती हैं, उनका एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि कृष्ण हमें सजा सजा देखेंगे तो प्रसन्न होंगे। अपने सुख की कोई आशा नहीं, रंच मात्र भी आशा नहीं। और जब वो जाती हैं और कृष्ण उनको देखते हैं, तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जब कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं, कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है, तो गोपियां कृष्ण की सुंदरता को देखती हैं, कृष्ण की प्रसन्नता को देखती हैं, गोपियां और प्रसन्न हो जाती हैं। जब गोपियां और प्रसन्न हो जाती हैं, तो कृष्ण उनकी प्रसन्नता को देखे कृष्ण और प्रफुल्लित हो जाते हैं। जब कृष्ण को प्रफुल्लित देखते हैं, गोपियां और प्रफुल्लित हो जाती हैं। कृष्ण उनको खुश देखते हैं, कृष्ण खुश हो जाते हैं। तो बताते हैं, यह असीमित कॉम्पिटिशन चलता रहता है, असीमित। लेकिन कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं सुख वांछा नहीं कोटि सुखगण कोटि गण सुख, गोपियों की सुख की कोई वांछा नहीं है, लेकिन फिर भी जो गोपियों का सुख है कृष्ण के सुख से करोड़ों गुण। तो ये भक्ति का बड़ा विस्मयकारी अद्भुत प्रभाव है। भक्ति का क्या प्रभाव है कि भगवान के आनंद से ज्यादा भक्त का आनंद है। कमाल की बात है, ऐसा कोई संसार में ऐसा सुख देखा है? कोई कई बार लोग बोलते हैं ये कृष्ण बड़े इगोइस्टिक हैं जी, ये कहते हैं मेरा गुणगान करो मेरा कीर्तन करो, ये क्या तरीका है? अपना कीर्तन सुना तो सबको अच्छा लगता है, हैं? हमारा कोई व्यक्ति हो, कई लोगों ने अपने चापलूस रखे होते हैं, बढ़िया शुरू हो जा, आप महान हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, हम फूलते जाते हैं फूलते जाते हैं। ऐसा नहीं है, कृष्ण का जब हम गुणगान करते हैं तो कृष्ण को इतना आनंद नहीं मिलता, गुणगान करने वाले को ज्यादा आनंद मिलता है। यही भक्ति की महिमा है, और इसी आनंद का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। ये क्या चक्कर है, ये राधा रानी का आनंद मेरे आनंद से ज्यादा कैसे? कृष्ण क्षुब्ध हो गए, मैं पूरे संसार को आनंद दे रहा हूं लेकिन राधा रानी का आनंद मेरे आनंद से ज्यादा कैसे? तो इसलिए जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो भक्त का आनंद भगवान से भी ज्यादा हो जाता है। तो यह है अलादनी शक्ति का प्रभाव। अलादनी शक्ति केवल कृष्ण को ही आनंद नहीं देती, वो भक्तों का भी पोषण करती है। तो जब कृष्ण से राधा रानी का विस्तार हुआ, वो विस्तार से केवल कृष्ण ही आनंद नहीं उठा रहे, उस विस्तार के कारण सभी जीवों को मौका मिल रहा है कृष्ण की सेवा करने के लिए और अपना पोषण करवाने के लिए, क्योंकि हर जीव की केवल यही इच्छा है। राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में प्रबोधानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि ये जो राधा दो शब्द हैं ये पराविद्या है। पराविद्या क्या अर्थ है? यानी कि ये एक जीव की अल्टीमेट डिजायर को पूरा करता है, जो उसकी वास्तविक इच्छा है उसको पूरा करता है। हम सबके कितनी इच्छाएं हैं? एक इच्छा है कि अनेक इच्छाएं हैं? अनेक इच्छाएं हैं, लेकिन जीव अपनी जब शुद्ध अवस्था में होता है तो उसे केवल एक ही इच्छा है। क्या इच्छा होती है? कृष्ण से प्रेम करना, बस। लेकिन जब हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो बहुशाखा, हमारी इच्छाएं बहुशाखा हो जाती हैं। लेकिन जो राधा शब्द है, ये जो शब्द को उच्चारण करता है, तो ये राधा शब्द से ही हमारी जो असली इच्छा है कृष्ण को प्रेम करने की, वो पूरी होती है। बोलिए जय जय। ऐसे आगे लिखते हैं कि जब कोई राधा पुकारने के लिए रा बोलता है तो कृष्ण बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, किसने मेरे प्रिया का नाम लिया? और जब वो राधा बोल देता है तो कृष्ण तो उसके पीछे भागते हैं, किसने मेरी प्रिया को पुकारा? इसी ढंग से कोई जीव जब कृष्ण बोलता है तो राधा रानी एकदम अलर्ट हो जाती है, और जो कृष्ण बोलता है तो श्रीमती राधा रानी उसके पीछे भागती है। और जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, तो कौन आते हैं? स्वयं राधा कृष्ण आते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम निरपराध होकर शुद्ध भाव से राधा और कृष्ण को पुकारेंगे, हरे शब्द मतलब राधा रानी, तो निश्चित रूप से राधा कृष्ण आते हैं, हमारे जीवा पर नित्य करते हैं। इसलिए भक्तों को बहुत राधा और कृष्ण दोनों उपलब्ध हैं, फ्रीली अवेलेबल, बुलाइए तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे तुरंत। इस संसार में बहुत बड़ा कोई व्यक्ति हो, अगर आप अभी नरेंद्र मोदी को पुकारो, उसका नाम पुकारो, आएगा? कोई चांस ही नहीं है। लेकिन कृष्ण को पुकारेंगे तुरंत उपलब्ध हैं, हमने केवल उनको पुकारना है। तो ये महिमा है राधा रानी के नाम की। तो समय कहने को बहुत कुछ है, समय देखना पड़ेगा कितना है। ओके, तो अब कुछ लीलाओं की चर्चा करते हैं। आज के दिन राधा रानी का प्राकट्य हुआ, तो उनके प्राकट्य की कई कथाएं हैं, और उसमें से एक कथा ऐसी है कि विश्वभानु जी यमुना में स्नान कर रहे थे और तर्पण कर रहे थे, तभी उनके सामने बहुत ही चमकता हुआ हजार मुख वाला एक कमल का फूल आया और उसके अंदर बहुत प्रकाश निकल रहा था और उसमें थी श्रीमती राधा रानी। विश्वभानु और कीर्तिदा जी की कोई संतान नहीं थी, वो उनको उठा के अपने घर में ले आए। और लेकिन श्रीमती राधा रानी की सुंदरता अद्भुत थी, उसका विवरण नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सुंदरता थी। लेकिन क्या थी, श्रीमती राधा रानी ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का समय होने लगा था तो भगवान ने राधा रानी से कहा कि मैं पृथ्वी लोक में जाऊंगा। राधा रानी बोला नहीं, मैं नहीं आना चाहते। भगवान ने पूछा क्यों? बोला वहां बहुत से पापी लोगों को देखना पड़ेगा। भगवान ने बोला नहीं, आप केवल मुझे देखेंगे। तो श्रीमती राधा ने कहा ठीक है, एक शर्त पे कि जब मैं पृथ्वी पर अवतरित होंगी, जब पहले व्यक्ति जिसको मैं देखूं वो आप होने चाहिए। भगवान ने बोला डन। इसलिए श्रीमती राधा रानी बिल्कुल ब्लाइंड ऐसे प्रकट हुई। अब जब वो प्रकट हो गई तो श्रीमत राधा एक बारी नारद मुनि जी बीना बजाते हुए गोलक में घूम रहे थे, बैकुंठ जगत में घूमते घूमते गोलक धाम पहुंच गए और वहां उनको लगा कुछ फीकापन है, वो बात नहीं है। तो मालूम चला कृष्ण अवतरित हो गए हैं पृथ्वी पर। तो वो समाधि में बैठे तो उनको मालूम चला हाँ, भौम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण हैं। तो नारद मुनि जी वहां प्रकट हो गए और ढूंढने लगे, चले गए नंद महाराज के घर में। तो वहां देखा नंद महाराज के घर में सोने के सुंदर बिस्तर पर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है और चारों तरफ से गोपियों ने उसको घेर रखा है और गोपियां उसको हंसा रही हैं, वो भी हंस रहा है, सब बड़े आनंद में हैं। तो नारद मुनि जी उनके पास में गए और देखकर एकदम विस्मित हो गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के यहां पर। और नारद मुनि उनको प्रणाम किया और उनका गुणगान करना शुरू कर दिया और उन्होंने नंद महाराज को बताया कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके घर में स्वयं परम सत्य प्रकट हुए हैं, इनका पूरा ध्यान रखना, स्वयं ब्रह्मा जी शिव जी मुनिगण ऋषिगण इनके दर्शन नहीं कर पाते, ये आपके यहाँ प्रकट हो गए हैं। तो ये कहकर नारद मुनि चल पड़े। अब नारद मुनि सोचने लगे जब स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए हैं तो राधा रानी भी अवश्य प्रकट हो गई होंगी, कहाँ होंगी राधा रानी। तो उन्होंने सोचा ब्रज के एक एक घर में जाऊंगा और ढूंढूंगा। तो नारद मुनि जी जाते हैं एक घर में और ढूंढते अभी भी कौन सी बालिका प्रकट हुई है। ढूंढते ढूंढते रावल पहुंच जाते हैं विश्वभानु जी के घर में और विश्वभानु जी को बोलते हैं आपकी मैंने बहुत गुणगान सुना है, आपकी कौन कौन संतान है। विश्वभानु जी अपने पुत्र को बुलाते हैं श्रीराम को, बोले ये मेरा पुत्र है। श्रीराम बहुत सुंदर दिखने में, उन्होंने नारद मुनि जी को प्रणाम किया, नारद मुनि जी ने उनका आलिंगन कर लिया, बोले ये तो बहुत सौभाग्यशाली है, ये तो कृष्ण बलराम के साथ क्रीड़ा करेगा, इसका आप ध्यान रखिए। नारद मुनि जी जाने लगे, विश्वभानु ने बोला रुकिए रुकिए, इसकी छोटी बहन भी है लेकिन हम बहुत दुखी हैं, ना वो देख सकती है, ना वो बोल सकती है, ना वो सुन सकती है। नारद मुनि जी बड़े उत्सुक हो गए, कोई विशेष बात है, बड़ा दिखाइए, दर्शन कराइए। तो उनको कमरे के अंदर ले गए बड़े दुखी होकर। और जब नारद मुनि ने देखा इतनी सुंदर बालिका, अत्यंत सुंदर बालिका, हालांकि वो देख नहीं रही थी लेकिन फिर भी इतनी सुंदर, नारद मुनि जी बोला ये स्वयं क्या है गोलेकेश्वरी श्रीमती राधा रानी। उन्होंने बोला अब क्या करें, उन्होंने बोला विश्वभानु जी आप थोड़ा बाहर जाइए। और नारद मुनि जी सोचने लगे इतनी सुंदर बालिका तो मैंने देखी नहीं, मैं तो इंद्रलोक गया, रुद्रलोक गया, ब्रह्मलोक गया, ऐसी सुंदरता कहीं नहीं, मैं तो स्वयं पार्वती जी से मिला जो कि पूरे भौतिक जगत में सबसे सुंदर हैं, उनकी सुंदरता तो उनके पास भी नहीं भटकती, स्वयं लक्ष्मी जी सरस्वती की तो छाया मात्र भी नहीं है, भगवान का मोहिनी रूप इतना सुंदर नहीं है जितनी ये सुंदर हैं, और ये तो साक्षात राधा रानी है, इनको मुझे प्रणाम करना चाहिए। और राधा स्वयं नारद मुनि जी एकदम स्तब्ध हो गए और जब बाहरी चेतना में आए बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं। क्या गुणगान कर रहे हैं कि आप तो भगवान की स्वरूपा शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, भगवान की ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, ज्ञान इच्छा शक्ति सब आपसे निकली हैं, आपसे ही महाविष्णु निकले हैं, आपने सृष्टि की रचना की है, आप ही प्रलय करती हैं, आप भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, आपका सुंदर रूप बताते हैं आप कितनी आत्मसंतुष्ट हैं, कितना आपको आनंद प्राप्त हो रहा है। तरह तरह से गुणगान करते रहे नारद मुनि। और गुणगान करते करते नारद मुनि जी सोच रहे थे कि जब से मैंने इनका दर्शन किया है मेरे हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो गया है, मेरे हृदय में कृष्ण की सेवा करने की इच्छा और तीव्र हो गई है। देखिए ये प्रभाव होना चाहिए राधा रानी का दर्शन करने से, कि हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा और प्रगाढ़ होनी चाहिए। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण के दर्शन में और राधा रानी के दर्शन में कुछ अंतर है। क्या अंतर है, दोनों साथ साथ ही तो खड़े हैं लेकिन अंतर है। वो ये बताते हैं जब कृष्ण वृंदावन में थे बड़े बड़े असुरों ने उनके दर्शन किए, कालिया नाग ने भी जब कृष्ण के दर्शन किए उनकी सुंदरता से प्रभावित हुआ लेकिन उसका द्वेष नहीं गया। कंस ने भी कृष्ण को देखा उनका द्वेष नहीं गया, लेकिन कृष्ण को उन असुरों का वध करना पड़ा उनके उद्धार के लिए। लेकिन जब कोई राधा रानी का दर्शन करता है उसके हृदय में तुरंत प्रेम संचारित हो जाता है। इसका प्रमाण क्या है, जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी का भाव लेकर, महाप्रभु के जिसने दर्शन किए वो क्या बन जाता था, कृष्ण का प्रेमी भक्त बन जाता था। महाप्रभु किसी का वध नहीं करना पड़ा, अपने आप सारे आसरी भाव समाप्त और कृष्ण प्रेम का उद्गार हो जाता था। तो ये राधा रानी के दर्शन करके नारद मुनि को लग रहा था कि मेरे अंदर प्रेम और प्रगाढ़ हो रहा है। और कृष्ण भक्त अति चतुर, इतना गुणगान करते 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 नारद मुनि ने अपनी एक और रिक्वेस्ट रख दी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बहुत सौभाग्य है, कृपया आप मुझे अपना किशोरी रूप भी दिखा दीजिए। बोले अब हो ही मौका तो मिल ही रहा है, बात कर दूं। और राधा रानी बहुत कृपालु हैं, तुरंत राधा रानी अपने किशोरी रूप में प्रकट हो गई। अरे ओ, और अकेली नहीं अपनी सखियों के साथ। और जब दोबारा से नारद मुनि ने देखा कि साक्षात राधा रानी किशोरी रूप में, वो फिर से मूर्छित हो गए। ललिता सखी थी भैया, मूर्छित ही होते रहोगे। उन्होंने राधा रानी के चरणों को धोया, चरणामृत लिया, उनके ऊपर फेंका, पुनः जागृत हो गए। बोले फटाफट परिक्रमा करो, गुणगान करो, जाओ हम जाने वाले हैं। तो नारद मुनि जी फटाफट परिक्रमा की, गुणगान किया और ललिता सखी ने बताया चिंता मत करो, लीला आगे बढ़ेगी तो कुसुम सरोवर में दोबारा तुमसे मुलाकात होगी अशोक वृक्ष के नीचे। तो इस प्रकार से नारद मुनि जी को श्रीमती राधा रानी के उनकी कृपावश दर्शन हुए। तो अभी तक श्रीमती राधा रानी ने आंखें नहीं खोली। तो एक बारी क्या हुआ, नंद और यशोदा मैया कृष्ण को लेके विश्वानु जी के यहां गए और नंद और विश्वानु जी गले मिले, यशोदा मैया और केतिदा गले मिले और कृष्ण को छोड़ दिया यशोदा मैया ने। और कृष्ण रेंगते रेंगते कहां पहुंच गए, राधा रानी के झूले के पास। और खड़े होकर उन्होंने क्या किया, अपने दिव्य हाथों से राधा रानी की आंखों को स्पर्श किया। और जैसे ही स्पर्श किया तभी श्रीमती राधा रानी ने अपने दिव्य नेत्रों को खोल दिया। रीवर और वृषभानु जी और कीर्ति दादी के उल्लास की सीमा नहीं रही। श्रीमती राधा रानी की। और जब श्रीमती राधा रानी 7 महीने की हो गई, अब क्योंकि श्री कृष्ण माध्यम बने, राधा रानी की आंखें आ गई, वो तो इस ढंग से सोच रहे थे। तो वृषभानु जी और नंद महाराज बहुत अच्छे मित्र बन गए। और जब 7 महीने की हो गई तो उन्होंने अन्नपराशर का एक उत्सव किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, सारे ब्रजवासियों को बुलाया, रोहिणी माता आई, बलराम जी आए, कृष्ण आए, नंद महाराज आए, सभी आए, यशोदा मैया भी आई। और जब अन्नपराशर का यज्ञ सब समाप्त हो गया, बहुत से मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और देखते हैं कि ये बालिका क्या लेगी सबसे पहले, सब अपनी योजनाएं बना रहे थे, लेकिन राधा रानी की अपनी अलग स्कीम थी। उन्होंने जब पहला बारी अन्न खाया तो क्या खाया, कृष्ण की जो जूठन थी उसको जाकर उन्होंने उठाकर पहली बारी अन्न अपने मुंह में डाला। तो दिखाते हैं चित्त इंद्रिय और मन पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित। तो इस ढंग से बहुत सी और मधुर लीलाएं हैं। इसी ढंग से जब राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेलती थी तो उनका क्या खेल होता था, जहां वो खेलती थी एक कोने में कृष्ण का विग्रह रख देती थी और खेलती क्या थी कि कृष्ण के लिए अलग अलग पकवान बना रही हैं। तो एक बारी द्वादशी की तिथि थी, वहां पे दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि की रेपुटेशन थोड़ी ऐसी है, उनको देखती सारी सखियां भाग गई लेकिन राधा रानी वहां खड़ी रही और दुर्वासा मुनि भी उनकी सुंदरता से बहुत मोहित हो गए। बोले बालिका तुम कृष्ण के लिए बनाती हो, सुंदर सुंदर वो बना रहे हो, खेल रहे हो, मेरे लिए खीर बना के लाओ। तो राधा रानी तुरंत गई, बहुत सुंदर दूध, चीनी, तेजपत्र, इलायची, किशमिश, कपूर इत्यादि डाल के तुरंत खीर बना के ले आई। और जैसे दुर्वासा मणि ने उसको पाया, बोले ये तो अमृत, अमृत है, ये तो अमृत, पूरी सृष्टि में ऐसा स्वाद नहीं है, ये कोई साधारण बालिका है ही नहीं, ये तो स्वयं श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी की। और दुर्वासा मणि तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, दुर्वासा मणि ने तुरंत उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम जो बनाओगी वो अमृत होगा, और जो इसका आस्वादन करेगा उसको बल मिलेगा, उसको यश मिलेगा और उसकी आयु बढ़ेगी। और इस ढंग से ये राधा रानी को विशेष वरदान मिला दुर्वासा मुनि से। और जैसे ही यशोदा मैया को ये मालूम चला कि दुर्वासा मुनि का ये आशीर्वाद मिला है, आप पहले से क्योंकि संबंध बन गए थे, अच्छे संबंध थे, यशोदा मैया ने रिक्वेस्ट किया, मेरा काना बहुत कमजोर है, आप राधा रानी से जो हाथ बनवा के पकवान भिजवाया कीजिए। और अब राधा रानी को रोज की सेवा मिल गई, प्रतिदिन राधा रानी बनाती थी भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान। और क्या होता था, कोई भी पकवान दोबारा रिपीट नहीं होता था, ये उनकी खूबी थी, और हमेशा भगवान की वो सेवा करती रहती थी। एक बारी यमुना माता जी ने प्रभुपाद जी से पूछा, एक राधा रानी का विग्रह बना रही थी कि विग्रह कैसे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मायापुर में चैतन्य मठ में देखा था कि राधा रानी के दोनों हाथ ऐसे हैं, एक ही हाथ पे दोनों हाथ मुड़े हुए, कैसे बनाने हैं। हाँ, प्रभुपाद ने बोला नहीं ऐसे नहीं, फिर कैसे बनाने हैं, प्रभुपाद ने बताया उनका दायां हाथ ऐसे होना चाहिए मुड़ा हुआ, और बायां हाथ में कमल हो, फूल हो, लेकिन वो नीचे ऐसे ना हो, वो भी थोड़ा ऊंचा हो, और राधा रानी की गर्दन झुकी हो नाचते हुए, है ना। तो प्रभुपाद ऐसे करके दिखा रहे थे डांसिंग फॉर्म। और प्रभुपाद ने बोला राधा रानी कृष्ण को बहुत सी सेवाएं करती हैं, लेकिन दो सेवाएं मुख्य हैं, डांसिंग एंड कुकिंग। और बोलते हैं राधा रानी डांस नेवर स्टॉप्स, अगर वो डांस रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा, और डांसिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कुकिंग। डांसिंग से भी ज्यादा है कुकिंग। एक बार मई 1977 में शीला प्रभुपाद जी का तिरुभाव होने से पहले किसी ने उनको सलाह दी कि आप ऋषिकेश में जाइए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो प्रभुपाद जी ऋषिकेश में गए, और वहां प्रभुपाद जी को ऋषिकेश में बहुत अच्छा लगा, गंगा का जल पिया उन्होंने, वहां कचौड़ी भी खाई प्रभुपाद जी ने, और भक्तों को कुकिंग किचन में जाके कुकिंग क्लासेस दी, उनको सिखाया। कुछ भक्त थोड़े एक्सपर्ट नहीं थे तो प्रभुपाद ने उनको खुद कुकिंग करके दिखाया, हालांकि प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फिर प्रभुपाद ने एक बात की कि जिस भक्त को कुकिंग नहीं आती इसका मतलब वो आलसी है। क्या है? जिसको कुकिंग नहीं आती वो आलसी है। मैंने ये सुना तो मेरा तो सर शर्म से झुक गया। लेकिन राधा रानी से हम आज प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी जो माता जी लोग हैं उनके हाथ में नया हथियार आ गया बोलने के लिए प्रभु जी लोगों को कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर कुकिंग नहीं आती तो आलसी हो। तो कुकिंग हम सीख लें, अच्छी बात है, इसे हमें अच्छा मौका मिलेगा राधा राधे कृष्ण जी को प्रसन्न करने का। तो राधा रानी की डांसिंग और कुकिंग, और प्रभुपाद जी कहते हैं डांसिंग से भी ऊपर कुकिंग, है ना। कुकिंग राधा रानी की बहुत फेमस है, और वो उसका वरदान मिला था उनको दुर्वासा मुनि का। तो इस प्रकार से राधा रानी की ये बहुत सी लीलाएं हैं। एक बारी अक्सर हम सुनते हैं कि जटिला और कुटिला हमेशा राधा कृष्ण की लीलाओं में बाधा डालती थी और आनंद बढ़ाती थी, सस्पेंस होता था, रोमांच आता था। लेकिन एक ऐसी लीला है जिसमें जटिला जी ने सहयोग दिया। एक बार एक कृष्ण की बहुत इच्छा हो रही थी राधा रानी से मिलने की, तो घूमते घूमते पहुंच गए जावट में, और दोपहर का समय था और घूम रहे हैं बाहर, ऐसे उनके महल के बाहर घूम रहे हैं। तो जटिला बाहर आई, बोले कान्हा ऐसे क्यों घूम रहे हो? बोले क्यों घूम रहा हूँ, बड़े परेशान लग रहे थे, प्यासे एकदम। बोले क्या हो गया? बोले बस वो धावली है ना मेरी गाय, उसका बछड़ा कहीं चला गया और धावली बहुत परेशान हो रही है, रो रही है, तो उसको बछड़े को ढूंढ रहा हूँ। तो बोले इतना भूखे प्यासे आओ, थोड़ा पानी पी लो अंदर। बोले ठीक है। तो अंदर जाना चाहते ही थे तो अंदर चले गए। उन्होंने राधा रानी को पुकारा, एक कान्हा के लिए पानी लेके आओ। और राधा रानी, उस समय तक जटिला को मालूम नहीं था कि राधा कृष्ण आपस में मिलते हैं। तो राधा रानी भी बहुत बड़ा घूंघट करके बड़े शर्माते शर्माते यूं पानी दिया, और कृष्ण ने भी पानी स्वीकार किया और राधा रानी को देखा उन्होंने, और जब पानी पी लिया तो तभी जटिलना बोला, अरे अरे काना क्या बताऊं, हमारा जो दूध धोने वाला आया ही नहीं, तुम तो बड़े एक्सपर्ट हो दूध धोने में, और देखो इन बछड़ों को भूख भी लग रही है, तुम थोड़ी गाय से दूध धो दोगे? कृष्ण बोला ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चाह कर देंगे। तो कृष्ण दूध धोने लगे तो बोले जरा बछड़े को खोलो, तो जटिला ने बछड़े को खोला तो बोला जब बछड़ा पहले दूध पिएगा तभी दूध शुरू होगा, तो बोला इस बछड़े को पकड़ो। अब जटिला में इतनी शक्ति नहीं थी कि बछड़े को पकड़े, बोले राधे यहाँ पे जरा बछड़े को पकड़। तो वो शर्मा रही थी, बोले काना है तेरा भतीजा है इसे क्या शर्माना, अपना ही है चल जा। तो बोले ठीक है, अब आपने बोल दिया परमिशन दे दी, तो राधा रानी भी साथ में चले गई। तो आराम से अब राधा रानी के साथ ही बैठी हैं, कृष्ण के साथ ही राधा रानी बैठी हैं, बछड़े को पकड़ गए और कृष्ण दूध धो रहे हैं। अब वो दूध तो कहाँ जा रहा है, नीचे पात्र में आधा गिर रहा है आधा जमीन पे गिर रहा है, और राधा रानी को देख रहे हैं। जटिला जी दूर बैठी हैं और कृष्ण की बैग थी उनकी तरफ, वो देख भी नहीं पा रही, लेकिन उसको संतुष्टि है कृष्ण दूध निकाल रहे हैं, और दूध तो गिरता ही जा रहा है बाहर और कृष्ण देख ही जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि उस गाय का पहली बार कृष्ण ने स्पर्श किया, गाय बड़ी उत्साहित हो गई, बोले जितना दूध निकालना निकालो, जहां मर्जी गिराओ कोई दिक्कत नहीं। निकलता गया दूध निकलता गया और कृष्ण देखते जा रहे हैं। जटिला भी सोचा इतना दूध कैसे निकल रहा है, और निकलते हैं निकलते जब पूरी बाल्टी भर गई, और फिर इस जंग से बोला बहुत बहुत धन्यवाद काना, बोला ठीक है अब मैं जाके अपने बछड़े को ढूंढता हूँ। तो इस प्रकार से जटिला जी ने इस लीला में मदद की राधा कृष्ण के मिलन की। एक बार राधा और कृष्ण बैठे थे एक तालाब के तट पे, और पूरा निकुंज था, रत्न सिंहासन था, सखियां चामर कर रहे थे, और तभी वहां पर एक भंवरा आ गया, और भंवरा राधा रानी के आसपास मंडराने लगा, मधुमक्खी आ गई थी। तो मधुमक्खी आई तो राधा रानी को डर लग रहा था, तो कृष्ण ने बोला अरे इसको भी अपना मधु थोड़ा चखने दो। तभी वहां पर वो मूर्छित हो गए, राधा और कृष्ण दोनों मूर्छित हो गए रोते रोते, सारी सखियां रोते रोते मूर्छित हो गई। अब क्या करें, सब मूर्छित हैं, अब खाली दो जीव बचे, एक कृष्ण का इस संसार में जो प्रेम है, लोग बोलते हैं लैला मजनू रोमियो जूलियट, ये प्रेम है ही नहीं संसार में। अगर वो बोले नहीं 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 कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, अगर ना भी हो स्वार्थ की भावना, लेकिन सनातन नहीं है, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम ये शुद्ध प्रेम है। इस प्रेम में रंच मात्र भी स्वार्थ की भावना नहीं है, रंच मात्र भी। गोपियां और राधा अपना एक लेश मात्र भी सुख नहीं चाहती, लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और कभी कृष्णदास कविराज जी लिख रहे हैं कि उनके ऊपर सुख थोप दिया जाता है, और हम इस संसार में भीख मांगते रहते हैं भगवान से, हमें सुख दो, हमें सुख दो, मेरा ये ठीक कर दो, बस ये ठीक हो जाए मेरे को सुख मिल जाएगा। लेकिन हमारे पर दुख थोप दिया जाता है। लेकिन ये पूरा रहस्य है संसार का, सुख की भीख मत मांगे। हम क्या करें आज? श्रीमती राधा रानी से यही प्रार्थना करें। श्रीमती राधा रानी केवल कृष्ण के लिए सोचती हैं, तो आज राधा रानी से यही प्रार्थना करें कि हमारे मन में क्या भाव हो, कृष्ण का भावना भावित का मतलब क्या है, केवल कृष्ण के लिए सोचना, यानी कि हरि गुरु और वैष्णवों के लिए सोचना, बस ये जीवन केवल उसके लिए है। ऐसा करेंगे तो सुख अपने आप हम पर थोप दिया जाएगा। और इस प्रकार के भगवान को और भक्तों को आनंद देने के लिए जितना भी मुझे कष्ट सहना पड़े, उस कष्ट को सहने की मुझे शक्ति दो। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाते हैं, श्रीमती राधा रानी के लिए अपने जीवन को संभालना असंभव था। कहा जाता है उज्जवल नींद मणि में उनकी कलाई कितनी पतली हो गई, उंगली के समान। उनकी जो अंगूठी थी उनका कंगन बन गई, इतनी पतली दुबली हो गई राधा रानी। और जीने की कोई आशा नहीं, वो सोची थी अभी प्राण त्यागूं, बस अभी प्राण त्याग दूं, लेकिन वो प्राण नहीं त्याग रही थी। क्यों? उन्होंने सोचा अगर मैं प्राण त्याग दूंगी और कृष्ण को मालूम चल जाएगा मैंने प्राण त्याग दिए हैं, तो कृष्ण को दुख होगा, कृष्ण को दुख होगा, इसलिए मैं जीवित रहती हूं। बस केवल एकमात्र यही है ना, अपने सुख की कोई आशा नहीं। तो ये है, इस प्रकार की भक्ति करने का हम प्रयास करेंगे कि अपने लिए किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई स्पृधा नहीं। प्रभुपाद जी बताते अगर हम राधा रानी से ये प्रार्थना करेंगे, हे राधा रानी मेरी बात करो कृष्ण से, राधा रानी क्या बोलेंगे? कृष्ण इसको स्वीकार कर लो, ये बहुत अच्छा भक्त है, मुझसे बेहतर है। देखिए प्रभुपाद कहते हैं इवन दो आई एम अ रास्कल, आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूं, धूर्त हूं, लेकिन राधा रानी क्या रिकमेंड करेंगी? ये मुझसे बेहतर है, इसको आप स्वीकार कर लो। तो अगर हम इतने, यानी कि श्रीमती राधा रानी की ये विनम्रता देखिए, इतने उच्च कोटि की भक्त जो कि स्वयं कृष्ण को नियंत्रित कर लेती हैं, वो कह रही नहीं कृष्ण इसको स्वीकार करो, ये मुझसे बेहतर है। यानी कि अगर हम सही भावना में सेवा करेंगे तो ये भाव उत्पन्न अति आवश्यक है कि ये मुझसे बेहतर है ना। हम आपको नापते रहे, अगर हमारे अंदर ये भावना कि नहीं मैं उससे बेहतर हूं, अभी मंजिल बहुत दूर है। और आज राधा रानी से यही कृपा मांगे कि ऐसी सेवा का भाव, ऐसी सेवा करने की हमारे अंदर इच्छा, एक लालसा, एक लौल्य उत्पन्न हो जाए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक बारी कृष्ण की इच्छा हुई कि राधा रानी जी के साथ डाइस की चौकस गेम बोलते हैं है ना, चौसर खेलते हैं। तो ललिता सखी भी थी, बोले चौसर खेलते हैं। तो ललिता सखी ने बोला देखो तुम तो ग्वाले हो, चौसर वोसर तुम्हें खेलना नहीं आएगा, हार जाओगे, रहने दो। बोले नहीं नहीं आज मैं बहुत अच्छा खेलूंगा। बोले ठीक है, खेलने के लिए एक रेफरी चाहिए, तो मैं रेफरी हूं, तो आप दोनों अपना अपना कुछ सामान रख दो, जो जीतेगा उसको सामान जाएगा। कृष्ण बोला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले कुछ तो होगा। बोले ठीक है बंसरी है, वो बंसरी दे दी। राधा रानी ने अपना कुछ एक कंगन दे दिया। बोले ठीक है चलो खेलना शुरू करो। आप जैसे ही कृष्ण ने वो चोकर फेंका तो क्या करते थे, कृष्ण की नजर जाती थी राधा रानी की तरफ, और राधा रानी केवल अपनी आंखों के कोने से उनकी तरफ देखती थी, अपनी कृपा कटाक्ष से देखती थी, कृष्ण के हाथ कांपने शुरू हो जाते थे, और वो जो नंबर बोलते थे 2 या 4 वो उल्टा आ जाता था, और सारी सखियां हंसती थी। बोले नहीं नहीं दोबारा करूंगा। फिर वो फेंकने लगते थे, राधा रानी थोड़ा सा मुस्कुराती थी और कटाक्ष से देखती थी, कृष्ण कांपने लगते थे, और फिर सखी ललिता को बोलते थे देखो ये चीटिंग है, ये तुम्हारी जो सखी है बहुत, जिसे कहते हैं कनिंग है, बहुत ही कनिंग है, मक्कार है, सीधा सीधा गेम क्यों नहीं खेलती, चुपचाप क्यों नहीं बैठती। बोले नहीं वो तो सीधी बैठी है, तुम खेलो। तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं अब मैं आप बिल्कुल संयम करूंगा अपना और खेलूंगा। कृष्ण ने बहुत बारी प्रयास किया, वो हर बारी हार जाते थे। अब ललिता सखी ने बोला, फिर कृष्ण ने बोला ये सब बेकार की गेम है, सब चीटिंग, में जा रहा हूं। बोले ऐसे कैसे चले जाओगे, हार गए हो, अब अपनी बंसरी तुम्हें नहीं मिलेगी। बोले देखो मेरे बंसरी दे दो। बोले बंसरी नहीं मिलेगी, कुछ तो दो इसके लिए। कृष्ण बोले मेरे पास केवल 2 ही धन है, एक तो मेरा मन था, एक मेरी बंसरी थी। मेरा मन तुम्हारी सखी ने चुरा लिया, बंसरी तुमने रख ली। एक चीज तो वापस कर दो, ऐसा करो अपनी सखी से मन लेके ले लो मुझे, मैं तुम्हें बंसरी दे दूंगा। इस प्रकार से ये लीलाएं हुई, जैसे मालूम चलता है कि कृष्ण पूर्ण रूप से राधा रानी के वश में है। कृष्ण का जो राधा रानी का एक गुण है, उस गुण का नाम बताया गया है आश्रव केशव। आश्रव केशव का अर्थ है कि केशव उनके प्रति सबमिसिव है, है ना, केशव भगवान उनके प्रति सबमिसिव होते हैं। तो आज हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है माधुर्य कृष्ण के प्रेम से बहुत ज्यादा है, लेकिन एक ऐसी लीला आती है जिसमें ये पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी का ऐश्वर्य भी कृष्ण के ऐश्वर्य से बड़ा है। एकमात्र लीला इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है। एक बार दो असुर थे, भाई थे, असुर भाई, उनका नाम था हर्षण और मर्षण। और हर्षण और मर्षण ने बड़ा, जैसे कहते हैं, त्राही त्राही मचा दी पृथ्वी पर और सबको बहुत तंग किया। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष बड़े दुखी हो गए और उन्होंने कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। बोले ये असुरों से वध करेगा। हैरानी की बात थी, कार्तिकेय को उन्होंने हरा दिया। तो अब सब बड़े परेशान, तो सभी देवतागण परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछे ये हर्षण और मर्षण की शक्ति का कारण क्या है। ब्रह्मा जी ने बहुत सोचा, बोले पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इतनी शक्ति कहां से आ गई, कार्तिकेय को भी हरा दिया, चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी के पास गए, शिव जी के पास जाके पूछा, शिव जी ने ध्यान लगाया, समाधि में गए। समाधि में जाने के बाद शिव जी बाहर आए समाधि से, बोले इसका बड़ा रहस्यमय कारण है, ये लोग बहुत रहस्यमय मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये शक्ति मिली, और वो मंत्र विष्णु मंत्र है, विष्णु मंत्र के उच्चारण से इनको इतनी शक्ति आ गई और अब तो इनको कोई नहीं हरा सकता, विष्णु के भक्त हैं ये तो, और स्वयं विष्णु इनका संहार करेंगे नहीं, अब क्या इसका कोई बचा ही नहीं। तो बहुत सोच के शिव जी ने बताया, बस एक ही उपाय है, आप किसके पास जाओ, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी के पास, वो आपकी मदद कर सकते हैं, विष्णु तो उनकी हत्या नहीं कर सकते। तो सभी देवता गण गए, राधा रानी से खूब तपस्या की, राधा रानी प्रकट हुई, उनको समस्या बताइए, हर्षण और मर्षण बहुत दुखी कर रहे हैं। राधा रानी बोला कोई समस्या नहीं। राधा रानी ने तुरंत स्मरण किया सुदर्शन चक्र का, क्योंकि कृष्ण राधा रानी की संपत्ति है तो सुदर्शन चक्र भी उनकी संपत्ति है। तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए अपने व्यक्तिगत फॉर्म में, रूप में, बोले हर्षण मर्षण का वध करके आओ, वो वध करके आ गए और इस प्रकार से उन्होंने देवताओं की रक्षा की। तो इस लीला से हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी का ऐश्वर्य कृष्ण के ऐश्वर्य से भी अधिक है। तो आज के दिन हम कंजूसी ना करें राधा रानी से कृपा मांगते हुए, और जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी राधा रानी के सच्चे भक्त निकले, कैसे वो सच्चे भक्त निकले कि पूरे विश्व में उन्होंने राधा रानी की महिमा को, कृष्ण की महिमा को स्थापित किया, इसी प्रकार से राधा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम किसी एक नए जीव को कृष्ण से जोड़ते हैं। इसी ढंग से हम श्रील प्रभुपाद जी के इस भाव को अंगीकार करें। प्रभुपाद जी ने हमेशा किसके लिए सोचा, अपने गुरु के लिए सोचा कि कैसे भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज प्रसन्न होंगे। तो हम आज राधा रानी से ये शक्ति मांगे कि हम अपना हर कार्य, अपना हर विचार, अपनी हर इच्छा का केवल एक ही केंद्र बिंदु हो, कैसे हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर ये भावना हमारे अंदर आ गई तो हम सच्चे राधा रानी के भक्त कहलाएंगे। इसके लिए हो सकता है हमारे में योग्यता ना हो, लेकिन राधा रानी की कृपा में बहुत शक्ति है। तो आज पूरा हृदय खोल कर उनसे हम कृपा मांगे। राधा रानी कृपा करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, हमें बस हृदय से कृपा मांगनी है, कृपा हमें प्राप्त होगी और निश्चित रूप से राधा रानी हमसे प्रसन्न होंगे, हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएंगे और सच्चे राधा रानी के भक्त बन पाएंगे। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं, और हम सबको श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्तों से निवेदन है अभी 5-10 मिनट रुकिए, बहुत ही इस राधा अष्टमी के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है जिसको सुनकर आपका आनंद करोड़ों गुणा बढ़ जाएगा। नहीं, अभी भी आपको लग रहा नहीं बढ़ेगा, करोड़ों गुणा आनंद बढ़ जाएगा। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं क्या होने वाला है। अभी
आपने कल्पना भी नहीं की होगी जो होने वाला।